ओम शांति। आज का दिन इतने सुंदर है, हम सबका परम सौभाग्य है। हम सबके बीच में हम सबके अति प्यारी राजदुलारी सारे ब्राह्मण परिवार के बाप दादा के अति प्यारी परम आदरणीय संतोष दीदी जी उपस्थित हैं। हम सब करतल ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आप सारी ईश्वर विश्वविद्यालय की शान है। वर्तमान समय जॉइंट चीफ के रूप से आप सेवारत है। इनकी जीवन की सारी सेवाओं को देखते हुए मैं समझती हूँ इनके लिए क्या शब्द कहूँ। आप सारे विश्व के लिए सम्माननीय हैं। आप सचमुच सबके दिलों को संतुष्ट करने वाली अपनी रूहानियत से अपनी गुणों से, इसीलिए बाबा ने आपको ऐसे स्थान पर उपस्थित किया है। आप बेहद की है, आप सारे विश्व की है। दीदी जी के पर्सनालिटी को देखते ही मैं समझती हूँ दीदी जी के पर्सनालिटी से हरेक आत्मा अपने विशेष अलौकिकता के रूहानियत के आकर्षण का अनुभव जरूर करती है। जन्म से ही आप कई ऐसी विशेषताओं से प्राप्त की है अलौकिक। जन्म से ही प्यारे बाप दादा ने अनेक वरदानों से आपको सजाया है। दिल की गहराई से प्यार भरे सत्कार भरे स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। अभी परम आदरणीय दीदी जी से धारणायुक्त बाबा के धारणायुक्त क्लास सुनेंगे। आदरणीय दीदी,
ओम शांति, ओम शांति। वर्तमान समय बाप दादा हम बच्चों को एक विशेष होमवर्क देते हैं। अव्यक्त बाप दादा की मुरली आपने सुनी होगी पिछले हफ्ते की, पिछले सीजन इसमें जब आए थे बाबा, बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही बात करो, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना अनोखा विद्यालय है जिसमें छोटे बच्चे बूढ़े जवान सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा बाबा सरल हम बच्चों को काम देते हैं जो करने वाले को तकलीफ ना हो। तो बाबा ने कहा बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, चलो तुम किसी को नहीं समझा सकते हैं, नहीं मनसा सेवा कर सकते हैं, नहीं इतनी धारणाएं कर सकते हैं, सब बातों को छोड़ दो और एक ही बात करना चालू कर दो, सबको दुआएं दो और दुआएं लो। अभी आप खुद भी समझ सकते हैं, दुआओं दुआएं दो और दुआएं लो जो है इसमें सब कुछ आ जाता है। भक्ति मार्ग में आज तक भगत हमारे जड़ चित्रों के द्वारा दुआ मांगते हैं, इसीलिए हमारे पास दुआओं का इतना बड़ा स्टॉक होना चाहिए जो वर्तमान समय तो हम सबको दुआएं दे और दुआएं ले, परंतु आधा कलम भक्ति मार्ग में भी सबको दुआ देने का हमारी मूर्तियां कार्य करें। अभी दुआएं कौन दे सकता है? सबसे पहले है लेने की बात कि दुआ ले कौन सकता। पहले जब बाबा को नहीं पहचानते थे तो हम बाबा को कहते थे, हे भगवान दुआ कर, आशीर्वाद कर। अभी जब बाबा का बन गए तो बाबा कहता कि मेरे से दुआ मांगने के पहले तुम खुद के ऊपर खुद दुआ करो। तो एक है खुद के ऊपर खुद दुआ करना, एक है बाप के द्वारा दुआ लेना, तीसरा है सर्व से दुआएं लेना। तो अभी हम देखते हैं कि खुद के ऊपर खुद कैसे दुआ कर सकते हैं। कि अपने सिर पर हाथ रखें तो दुआ हो जाएगी। वैसे भी देखा जावे तो दो प्रकार का कर्म होता है। आज आप ये आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में बहुत जगह पर लोग पानी पिलाने के लिए प्रबंध करते हैं, उनका पुण्य का खाता जमा होता। परंतु अगर कोई व्यक्ति है और वो प्यास से तड़फ रही है, उस समय अगर आप उसको एक गिलास पानी पिला के भी जेदान दे देते हैं तो पुण्य से भी ऊपर आपकी दुआ जमा होती, उसके अंदर से दुआ निकलती है कि आपने मेरे जीवन को बचा दिया, मुझे जेदान दे दी। आई वेला के समय, जिस समय आवश्यकता है जिसको, उस समय अगर हम किसी को मदद करते हैं तो हमको दुआ मिलती। वैसे मदद करना अलग है, पर सामने वाले को आवश्यकता है उस समय करना बहुत बड़ी बात होती है, वो दुआ में परिवर्तित हो जाती। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें खुद के ऊपर खुद किस रीति से दुआ करनी है। अपने ऊपर दुआ करना अर्थात सदैव आपके श्रीमत के ऊपर चलते रहना। हमारी जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाएं बाप ने हमें खींच के दिया है, लक्ष्मण रेशाएं, अगर हम सदैव उन लक्ष्मण रेशाओं के अंदर चलते हैं तो हमारा दिल जो है प्रसन्न होता है, हमको सेटिस्फेक्शन होता है। और जैसा खुद के लिए निकलता है अंदर से कि वारे मैं तभी निकल सकता है जब हमारी कमाई से हाथ भरतू होते जाते हैं। तो जितनी जितनी हम ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलते हैं, जितना जितना हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, उतना उतना समझो हमारे को खुद की खुद दुआएं मिलती, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर अभी भी अंतिम घड़ी आवे तो जिसने खुद के ऊपर खुद दुआ किया है उसको कभी भी पश्चाताप नहीं हो सकता है कि बाबा ने तो इतना समझाया, बाबा ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत किया, परंतु मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया। तो स्व उन्नति के द्वारा ही हम अपने ऊपर दुआ कर सकते हैं। परंतु चलते चलते क्या होता है, कभी कभी कोई कोई आत्माएं स्व सदैव स्व उन्नति का ध्यान रख के चलना चाहिए। परंतु दो बातें होती है, एक होती है स्व उन्नति, स्वस्थिति, और दूसरी होती है परिस्थिति। हमारे जीवन का फाउंडेशन स्वस्थिति है। स्वस्थिति को मजबूत करना, स्वस्थिति को अचल अडोल बनाना, एक रस बनाना, ये हमारे जीवन का फाउंडेशन है। उसके बदले हमें जो स्वस्थिति के लिए अपना समय, बाबा के द्वारा जो भी शक्तियां प्राप्त मिली है, हुई है, जो युक्तियां मिली है, वो स्वस्थिति में स्थित होने के लिए जो भी कुछ मिला है, उसके बजाय कभी कभी कोई कोई चलते चलते ऐसी कोई परिस्थिति उनके सामने आ जाती है, तो जो स्वस्थिति के लिए समय और शक्तियां लगानी चाहिए उसके बदले परिस्थिति से उलझ करके अपना समय और अपनी शक्तियां उसमें बर्बाद कर देते। तो इसीलिए हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, परंतु उससे नुकसान क्या होता है, आत्मा कमजोर होती जाती है और दिन प्रतिदिन अपने समय को वेस्ट करने के कारण, शक्तियों को वेस्ट करने के कारण उसको खालीपन महसूस होता है। बाबा कहते हैं बच्चे सदैव, तुम बच्चों को ये अनुभूति होनी चाहिए कि पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा। तो ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति के बजाय कुछ पाना है, कुछ पाना है, बाबा जो बोलते हैं उतना नहीं पुरुषार्थ करते हैं, ये जो अंदर में चलता है इससे हमारी स्वस्थिति रुक जाती। ऐसी हमारी स्थिति न हो जो हम कुछ पाने के पीछे लगे, पर सदैव हमारी स्थिति वो रहे कि हमको जो पाना था हमने वो पा लिया, क्योंकि जब हम पा लेंगे तभी दूसरे को दे सकेंगे। अगर हम ही प्राप्त नहीं करेंगे तो औरों को कैसा दें। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने ऊपर फुल अटेंशन दे करके, साकार बाबा हमेशा कहते थे बच्चे, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, मरना भी पड़े तो भी अपनी जो धारणाएं हैं, जो हमारे को बाबा ने सिखाया हुआ है, वो हमें कभी भी छोड़ना नहीं। तो जब इतना दृढ़ संकल्प करके हम इस मार्ग पर चलते हैं तो सदैव हमारे लिए हमारी दुआएं जैसे कि जमा होती जाती है, स्टॉक जमा होता जाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो खुद के ऊपर दुआ करना जानता है वही बाप की भी दुआएं ले सकता है। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं? हमेशा कहा जाता है ज्ञानी तो आत्माएं परमात्मा को अति प्रिय। तो बाबा भी कहता है ज्ञान सुनने और सुनाने वाले बहुत हैं, परंतु ज्ञान को जीवन में धारण करने वाले, ज्ञान को अपनाने वाले, अपना बनाने वाले, उस ज्ञान को शस्त्र के रूप में यूज करने वाले, उस ज्ञान को शक्ति के रूप में यूज करने वाले, ज्ञान को प्रकाश के रूप में यूज करने वाले कम। तो जिस समय हम बाबा ने जो इतना अथाह ज्ञान दिया है, क्योंकि वो हमारा टीचर है, हमारे टीचर की हमको दुआ चाहिए। तो वो जो हमारा टीचर है, जब उसने जो हमें पढ़ाया है उसको जब हम स्वरूप में लाते हैं, तो स्वरूप में लाने के बाद ही हमें बाप की दुआ मिलती। दुआ मिलना क्या, हम उसको प्रिय लगते। दुआ कोई आशीर्वाद बैठ के दिया नहीं जाता है, परंतु अंदर से जो बाबा को लगता है ये मेरा बच्चा लायक है, सुपात्र है, आज्ञाकारी है, यही तो दुआ है। दुआ और क्या होती। तो ये जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो बाबा का वरद हस्त हमेशा हमारे मस्तक के ऊपर रहता है। इसीलिए बाबा जो हमें देता है उसको स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई हुई है कि बच्चे जो भी तुम सुनते हो, सुनने के बाद उसको छोड़ने दो, परंतु सुनने के बाद उसका अध्ययन करो, विचार सागर मंथन करो और सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना जितना तुम ज्ञान का सिमरण करते हैं, जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, उतने उतने ये ज्ञान जो है इसका स्वरूप बनते जाते। तो जब वो ज्ञान हमारे स्वरूप में आ जाता है, प्रैक्टिकल जीवन में आ जाता है, तो हमारे कर्मों के द्वारा औरों को दुआएं प्राप्त होती। क्योंकि हमेशा बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे जैसा कर्म तुम करेंगे तुमको देख करके और करें। तो हमारे कर्मों का परिवर्तन, हमारे कर्मों की जो श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठता औरों के लिए चलने के लिए एक मार्गदर्शक बन जाती है। तो इसीलिए बाबा ने जो भी हमको दिया हुआ है उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि पढ़ाई का तो यही होता है, पहले आप अध्ययन करो, अध्ययन करके उसका मनन करो, मनन करके चिंतन करो, और चिंतन करके क्या करो, मगन हो जाओ। तो मगन की जो स्थिति है, ईश्वरीय लगन में मगन रहना, और जिस मगन के द्वारा ही हमें सर्व प्राप्तियां होती है, उसके लिए हमें विशेष अध्ययन करने की ज्ञान की आवश्यकता है, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता है, अर्थात उसको हजम करने की आवश्यकता। बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे देखो जानवरों में भी अक्ल है, गाय एक घंटा घास खाएगी पर सारा दिन उसका मुंह हिलता रहेगा, रवंथ करती रहेगी। जितना जितना ज्ञान वो रवंथ करेगी घास का, उतना उतना उसको ब्लड बनता है, शक्ति मिलती है। तो वैसे ही तुम जितना जितना ज्ञान का चिंतन करते हो उससे तुम्हारे को शक्ति प्राप्त होती है। वो कौन सी शक्ति मिलती है, वो मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती, ताकत मिलती है तुम्हारे को, जिस ताकत के आधार पर तुम अपनी कमी और कमजोरी जो है उसको नष्ट कर सकते। और जितना जितना हम बाबा के साथ खुद की भेंट करते हैं, साकार बाबा हम बच्चों को कहते थे, जब हम पार्टी लेके जाते थे तब तो बहुत थोड़े लोग होते थे, तो बाबा कहता था, बच्चे जब भी तुमको फुर्सत मिले ना, सारा दिन क्या करेंगे तुम, सवेरे मुरली सुन लिया और कारोबार कर लिया, फिर उसके बाद जब भी तुमको फुर्सत मिले तो हिस्ट्री हॉल में जा करके लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाना। तो उस चित्र के सामने जब तुम जाके बैठ जाइए तो क्या करो, उसके साथ अपनी भेंट करो, कंपेयर करो कि इसमें कौन से गुण है, वो गुण मुझे धारण करने के। तो जितना जितना तुम उसके साथ कंपेयर करेगे अपनी, उतना उतना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। अभी लक्ष्मी नारायण के साथ भेंट करना तो बहुत दूर की बात है, परंतु अगर हम साकार बाबा के जीवन को देखते हैं और बाबा के साथ अपनी भेंट करते हैं तो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य यही है कि हमें बाप समान बनना है, हमें फरिश्ता बनना है। इस लक्ष्य को सामने रख कर के जब हम चलते हैं तो बाबा देखता है मेरे बच्चे मेरे समान बनने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप बताओ बाबा की हमारे लिए कितनी दुआएं निकलती। और जितनी जितनी आत्माओं की हम लोग सेवा करते हैं, सेवाओं से दुआएं जमा होती है। आप वाणी के द्वारा सेवा करो, मनसा के द्वारा सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, जितनी जितनी हम सेवाएं करते हैं उतना उतना हमारे को शक्ति मिलती है, उतनी उतनी हमारे को क्या मिलती है, औरों की एक गुड विशेष मिलती है। तो इसीलिए हमारे को हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, परंतु हमें बेस्ट करना। सारे विश्व बाबा कहते हैं तुम बच्चे विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तक माना क्या? आप सबको दुआएं देते, दुआएं देना माना क्या? सबके लिए शुभ चिंतक बनो। जब तक तुम सबके लिए शुभ चिंतक नहीं बनते हो तब तक सामने वालों का उद्धार नहीं हो सकता है। तो शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ चिंतन की आवश्यकता है। जितना जितना शुभ चिंतन चलता है उतना उतना ही शुभ चिंतक बन सकते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा हमेशा व्यर्थ चिंतन के ऊपर हमें कंट्रोल करना सिखाता है। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई उसके बाद भी जब हम लोग आए तभी भी बाबा कहते थे बच्चे अगर मनसा में कुछ चलाना कोई हर्जा नहीं है, परंतु वाणी और कर्म में नहीं आना चाहिए। पर मम्मा पहले दिन से बहुत सावधान करती थी कि ऐसा नहीं कि मनसा में चलेगा तो कोई बात नहीं है। मम्मा कहती थी हमेशा ध्यान रखो हमारे मनसा में भी कोई भी फालतू संकल्प और विकल्प नहीं आने चाहिए। आज बाबा आप लोगों को छोटा समझ के छोड़ देता है, परंतु कल यही बाबा आप लोगों को सावधान करेगा कि आप अपनी मनसा को निर्संकल्प बनाओ, आप अपनी मनसा को पावरफुल बनाओ, आप अपनी मनसा को पॉजिटिव बनाओ। तो ये जो मनसा को पॉजिटिव बनाना है, शुभ चिंतन करना है, क्योंकि शुभ चिंतन जो कर सकता है वही निर्संकल्प रह सकता है। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो आप निर्संकल्प नहीं बन सके। पर जितना जितना हमें शुभ चिंतन चलता है, ज्ञान का चिंतन चलता है, स्व का चिंतन चलता है, प्रभु का चिंतन चलता है, उतना उतना हम जब चाहिए तभी निर्संकल्प स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और वो जो निर्संकल्प स्थिति है उस निर्संकल्प स्थिति के द्वारा ही हम एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकते हैं और बाबा के साथ अपने मन को और बुद्धि को जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मम्मा ने विशेष इस बात का पहले दिन से ही ध्यान रखा कि मुझे व्यर्थ चिंतन कभी भी नहीं करना है, मुझे फालतू चिंतन कभी भी नहीं करना है। फालतू चिंतन न चले इसीलिए फालतू बातों में कभी इंटरेस्ट नहीं लेना। जिन बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उन बातें वो बातें ना मेरे को सुननी है ना देखनी है और ना बोलनी। इसीलिए बाबा रोज पाठ हमको पक्का कराता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। सुनना है तो ज्ञान सुनो, बोलना है तो आत्मोन्नति की बातें बोलो, करना है तो श्रेष्ठ कर्म करो, सोचना है तो हमेशा शुभ चिंतक बन के सोचो। तो जितना जितना हमारा अपने ऊपर अटेंशन रहता है उतना उतना क्या होता है हमारे जीवन में तो परिवर्तन आता है, परंतु हमारे द्वारा अनेक आत्माएं जो है वो उस रास्ते पर सरल रीति से चलती है। और जब ही आप किसी के गाइड बन के चलते हैं, मार्गदर्शक बन के चलते हैं, चलने वालों को सहज हो जाता है तो वो आपको दुआ देते हैं कि देखो नहीं तो हम भटक जाते थे, इनके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग भी जो चल रहे हैं तो हम कहते हैं ना बाबा तो है, परंतु हमारी दादियों ने हमारे ऊपर इतनी मेहनत किया है, हमारे को ऐसा रास्ता बताया है जिस रास्ते पर हम बहुत इजीली चल सकते। तो इसीलिए ये जो संगम युग है, संगम युग ये ईश्वरीय परवरिश का युग है, परंतु परवरिश के साथ साथ क्या है, ईश्वर जो हमारे ऊपर परवरिश करता है उसका रिटर्न करने का भी युग है। तो बाबा जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत करता है वो हमें रिटर्न करना है, अर्थात दूसरों को देना है। और ईश्वरीय प्राप्तियां ऐसी चीज है, आप जितना देंगे उतनी बढ़ेगी। वैसे स्थूल जो प्राप्तियां होती है वो देने से कम हो जाती है, परंतु ईश्वरीय प्राप्तियां देने से बढ़ती है। तो हम दाता के बच्चे हैं, इसीलिए कोई भी हमारे साथ मिले तो उसको शक्ति मिले, किसी को आनंद मिले, किसी को खुशी मिले। जब ये ध्यान में रहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमसे कोई भी मिले तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बाबा से मिलते थे तो हमने अनुभव किया ना, बाबा से मिलते थे तो कितना उमंग उत्साह बढ़ जाता था। हम अगर उमंग उत्साह में रह जाए तो सामने वालों को भी आप उमंग उत्साह दिला सकते, अपने साथियों को उमंग उत्साह दिला सकेंगे, आने वालों को उमंग उत्साह दिला सकेंगे। अगर हमारे अंदर ही वो उमंग उत्साह नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसा कह दें। और जब दूसरों को हम उमंग उत्साह दिलाते हैं, और सबसे बड़ी बात गिरने वालों को अगर हम संभाल करके चलते हैं तो उसका पुण्य या उसकी जो दुआ है वो बहुत बड़ी होती। आज देखो जो नहीं चल रहे ईश्वरीय मार्ग पर, उनको चलाना तो पुण्य है ही, उनको रास्ता बताना तो श्रेष्ठ कर्म है ही, परंतु जो चलते चलते धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, उनको वापस उस स्पीड पर लाना, उनके अंदर वापस आप शक्ति उत्पन्न करना, ये कितनी बड़ी बात। मेरे को शुरू शुरू में जब ही मैं आई तो साकार बाबा ने हमको जानकी दादी के पास भेजा था पुणे में, तो मैं दादी के साथ रहती थी, छोटी थी। मैं दादी को पूछा, दादी अब मैं क्या सेवा करूं, तो दादी बोलती थी तुम एक काम करो, जो मूर्छित हो गए ना उनको सुरजीत करने का काम करो। अभी मेरे को तो समझे नहीं मूर्छित होना क्या होता है और सुरजीत करना क्या होता है। मैं बोला ऐसा कैसा होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलती थी उसके लिए संजीवनी बूटी सुंगानी पड़ती उनको। तो हमने समझा कोई बूटी बूटी होगी जो सुंगाएंगे तो वापस सुरजीत हो जाएंगे। तो तभी हमको दादी ने समझाया था जो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, उनको वापस उमंग उत्साह में लाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, ये दुआएं जमा करने का काम। आप नयों को चलाते हो बात अलग है, पर पुराने जो है वो जब खिसकते हैं उनको संभालना ये बड़ी बात होती है। जैसा नहीं चलते चलते किसी का पैर खिसक जाता है स्थूल रीति से भी, तो क्या करते हैं हम, तुरंत उसको पकड़ते हैं, रास्ते में से जा रहे हैं, समझो कोई गाड़ी के नीचे आ रहा है तो तमाशा थोड़े ही देखेगी, भाग के समझेगी इसको खींच के इधर निकाले बेचारा जा रहा है, तो उस समय तो उसकी दुआ निकले, अरे तुमने मेरे को बचा दिया। तो वैसे ही जो ठंडे हो गए उनको छोड़ो नहीं, बाबा देखो हमेशा कहता है पीठ करो उनकी, और बाबा कितनी पीठ करता है, बाबा कितना ध्यान रखता है। बाबा कहता है बच्चे मेरे को छोड़ के चले जाते हैं परंतु मैं बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, वो पीछे पीछे घूमता रहता है बच्चों के, बच्चों का ध्यान रखता है बाबा। तो जैसा बाबा बच्चों का ध्यान रखता है वैसा हमारा काम है बाबा के बच्चों का ध्यान रखना। जो भी थोड़े भी ठंडे हो गए हैं तो ऐसा नहीं फिर वो ठंडे हो गए तो और भी उसको ठंडा करो, कोई कोई ऐसे होते हैं ना, एक समझो सामने ठंडा हो गया चलते चलते, वो कहता है इस कारण से ये हुआ वो हुआ हुआ, तो दूसरा जो होगा वो बोले हाँ मेरी भी यही हालत है ऐसा ही होता है ये हुआ, और मतलब वो बेचारा गिरा है उसको और लात मार रहे तुम, ये पुण्य का काम कर रहे है। नहीं जो गिरा है उसको उठाने का काम करो, और देखो उठा कौन सकता है, रास्ते से भी हम जाते हैं, गिरे हुए को कौन उठा सकता है जो झुकना जानता है। आप कोई गिरा है उसको आप सीधा ऐसा खड़ा होकर हाथ दे वो पकड़ेगा क्या? आपको नीचे झुकना पड़ेगा। तो जितना जितना हमारे अंदर वो निर्माणता का गुण आता जाता है उतना उतना हम गिरे हुओं को उठा करके दुआएं जमा कर सकते। हमारे को गिरे हुओं को उठाना है, गिरे हुओं को हमको उठा करके उनको मंजिल तक पहुंचाना है, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अगर हम ध्यान में रख करके पीछे चलते हैं तो सर्व का सदैव कल्याण कर सकते हैं, अपने ऊपर अटेंशन दे सकते हैं, अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकते। तो हमें बाबा से भी दुआएं लेनी है, और बाबा तो सदैव वैसे भी बद्दुआ तो कभी देता ही नहीं है, परंतु जो आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमांबरदार है, उनके लिए बाबा को अंदर से एक्स्ट्रा प्यार निकलता है। जैसे लौकिक में भी आप देखेंगे वहां तो बाप बच्चों को प्रॉपर्टी बांट के देता है, परंतु जो उसके आज्ञाकारी बच्चे हो गए ना उनको अलग भी कुछ न कुछ दे देगा। तो वैसे ही यहां भी जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा जो बोलेगा वो जी हां करने वाले हैं, उनके ऊपर बाबा की एक्स्ट्रा कृपा रहती है, उनके ऊपर बाबा का एक्स्ट्रा ध्यान रहता है। बाबा कहता है ना, तुम तो मेरे को याद करते हो पर मैं भी तुमको याद करता हूं, तो याद करना ये भी तो दुआ हो गई, भगवान हमको याद करे ये कम बात है कि? तो भगवान याद करे इतनी पात्रता हमको अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी, इतना आज्ञाकारी इतना वफादार बनना पड़ेगा, तभी बाबा हम बच्चों को याद करेगा, बाबा के हम दिल पर चढ़ेंगे। बाबा कहता है ना, जो दिल पर है तो 100 ताऊजी तख्त पर बैठ सकता है, अगर बाप दादा के दिल पर ही नहीं चढ़ते हैं तो ताऊजी तख्त कैसा मिलेगा हमारे। और दिल पर वो चढ़ता है जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है। तो इसीलिए हमें कभी भी बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, इस बात की गांठ बांध करके चलना है। समय कितना भी बदलने दो परंतु हमें अपनी ईश्वरीय मर्यादाएं नहीं छोड़नी। साकार बाबा का आप लोगों को मालूम है, लौकिक जीवन में भी बाबा ने अपना जो वैष्णवपंथी था उस समय भी बाबा ने कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, उस समय भी अपने नियम धर्म नहीं छोड़े। अलौकिक जीवन तो अलग ही था, वो तो बात ही मत पूछ। तो ऐसे बाबा के हम जब बच्चे हैं तो हमें भी सदैव इन बातों का ध्यान रख करके और पीछे चलना, और खास विशेष ये हमें याद रखना है कि जिसको भी सहयोग की आवश्यकता, सहयोग किसको मिलेगा? सहयोग उसको मिलता है जो दूसरों को सहयोग देता। दुआ वो दे सकता है जो फराग दिल होता है, बड़ी दिल वाला होता है। बाबा क्यों सबको इतनी दुआएं देके बैठा? क्योंकि उसकी बहुत विशाल दिल है, वो माफ करना जानता है, बच्चों की भूलों को माफ कर देता है, रहम करता है। तो जितना जितना हमारे अंदर रहम की भावना आती है, समाना, समाने के बाद बुलाना और उस बात को मिटा देना। अगर उस बात को मिटा देते हैं तो हम सामने वाले के ऊपर रहम कर सकते, उसके ऊपर उसको मदद कर सकते, सहयोग दे सकते। परंतु हम आत्माएं क्या करती हैं, कोई भी बात होती है तो उसका इफेक्ट अपने मन के ऊपर आ जाता है, अगर अटेंशन नहीं होता है तो। जब मन के ऊपर इफेक्ट आ जाता है तो ये नहीं समझते हैं कि वो इफेक्ट मेरे को डिफेक्ट करता है, मेरी स्थिति को डिफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि किसी भी बात का अच्छाई या बुराई उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरों के संस्कारों का, दूसरों के स्वभावों का, दूसरों की चलन का अगर इफेक्ट आ जाएगा तो आप उद्धार कैसा करेंगे? बाबा देखो सबसे ज्यादा किसका, किसके ऊपर ध्यान देता है? जो कमजोर आत्माएं हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, माताओं कन्याओं को बाबा ने क्यों आगे रखा? क्योंकि बाबा कहते हैं तुमको सारे विश्व ने क्या किया, धुतकारा, सबने अपमान किया, परंतु बाबा ने तुमको चोटी पर चढ़ा दिया। वैसे भी लौकिक में जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके ऊपर माता पिता का ज्यादा ध्यान रहता है। वो बोलेंगे ये मेरे कमजोर बच्चे हैं, इनका ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैसे जो भी आत्माएं कमजोर है, बिचारी दुखी है, अशांत है, उनका ध्यान रखना ये हमारा काम है। उनको इस समय हमारी आवश्यकता है, वो समझे या नहीं समझे। बाबा कहता है लास्ट में तुम्हारे पास क्यू लगेगी, पर उस क्यू की पूर्ति करने के लिए हमारे पास स्टॉक इतना जमा चाहिए। अगर लास्ट में हमारे पास सुख शांति आनंद दुआ लेने के लिए क्यू लगेगी, तो उस समय हम दे सके उनको इतना मैंने स्टॉक जमा किया है। और ये स्टॉक वही जमा कर सकता है जिसकी दिल बड़ी होगी, वो हो उसका भंडारा भी बाबा कहते हैं भरपूर हो जाता है, भंडारी भी भरपूर हो जाता है। तो भंडारा किससे भरपूर होता है? गुणों से भरपूर होता है, शक्तियों से भरपूर होता है। परंतु आप सिर्फ देने की भावना रखो, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य भी क्या है, हमें देवता बनना है। देवता माना देने वाला, दाता माना देने वाला। तो हमारी मूर्तियां ही दे रही है तो हमको तो देना ही देना है ना। लेने की कभी भी भावना नहीं रखना। अगर लेने की भावना हम रखते हैं तो क्या होता है, वो व्यापार हो जाता है, देना और लेना, वो सेवा नहीं होती। तो इसीलिए हम बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं। बाबा कहता है कि बच्चे कभी भी ऐसा नहीं कहो हम सेवाधारी है, ऐसा कहो कि हम गॉडली है सेवाधारी, हम ईश्वरीय सेवाधारी है। तो ईश्वरीय सेवाधारी कहेंगे तो ईश्वर बाप याद रहेगा और सेवा भी तुमको याद रहेगी। तुम सिर्फ सेवाधारी कहेंगे तो बाप को याद करना पड़ेगा तुमको, पर ईश्वरीय सेवाधारी कहेंगे तो क्या होगा, ईश्वरीय सेवाधारी कहेंगे तो ईश्वर आप ही तुमको याद आएगा। तो जितना जितना हमको बाबा याद आएगा, बाबा क्यों घड़ी घड़ी कहता है मेरे को याद करो, मेरे को याद करो, क्योंकि जितना जितना हम उसको याद करते हैं उसके संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता। वैसा भी आप देखो जो साथ में रहते हैं ना, न चाहते हुए भी उसका रंग चढ़ जाता है उसके ऊपर। कोई चढ़ाता नहीं अपने ऊपर रंग, पर देखेंगे साथ में रहने वालों के विचार, साथ में रहने वालों के संस्कार मिलते जुलते होते। तो जब हम सदैव बाबा के साथ रहते हैं बुद्धि के द्वारा, तो बाबा का जो रंग है वो हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। इसीलिए तो हम पति से पावन बनते जाते, वो एवर पावन है। तो वो ऐसा रंग हमारे ऊपर चढ़ाता है, हमारी सारी मैल को साफ कर देता है। तो इसीलिए हमारे ऊपर एक ही सिर्फ रंग चढ़ा हुआ हुए, दूसरा कोई भी रंग नहीं रहे, किसी के रंग का हमारे ऊपर इफेक्ट न हो। इसलिए कहा जाता है सत का संग तारे और कुसंग बोड़े। तो हम सत रास्ते पर चलने वाले जो भी सत्य बाबा के बच्चे हैं, हमारे संग से और तर जाने चाहिए, भवसागर पार कर जाने चाहिए। डिबोने की तो बात ही नहीं आती है, वो तो काम हमारा नहीं हो, रावण का काम है डिबोना। तो जब इतना अटेंशन दे के चलेंगे तभी हम विश्व की सेवा कर सकते हैं, तभी औरों के ऊपर दया कर सकते हैं, औरों के ऊपर करुणा कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे सब भाई बहन हैं, तो हमारा काम है उनके ऊपर दया दृष्टि करना। गुरुओं को जाके कहेंगे हमारे ऊपर दया दृष्टि करो, हमारे को हमारे ऊपर रहम करो, तो बाबा भी कहता है बच्चे सबके ऊपर रहम करो, सबके ऊपर दया दृष्टि करो और सर्व का कल्याण करते रहो। हम लोगों ने साकार बाबा को देखा, मम्मा को देखा, दादियों को देखा, अपना आराम का समय भी क्या किया, उन्होंने सेवा में लगा दी। उनके लिए कोई दुआएं कम जमा हुई की? अपना आराम का समय भी सेवा में लगा देना। आप देखो साकार बाबा ने भी कितना इम्पोर्टेंस दिया सेवा को, लास्ट मोमेंट भी बाबा बच्चों को महामंत्र देकर के पीछे गए कि निराकारी भव, निरंकारी भव, संपूर्ण निर्विकारी भव, सारे ज्ञान का निचोड़ बाबा महामंत्र बच्चों को देकर के पीछे अव्यक्त बना। तो बाबा को इतना बच्चों का ख्याल था कि बच्चे ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेवे और मेरे समान बन जावे। तो इसीलिए हमें भी ये देखना है, किसी भी बात का स्वार्थ न रखते हुए सर्व आत्माओं का कल्याण करते चलो। जिसमें स्वार्थ होता है, स्वार्थ किए हुए कर्म से कभी दुआ नहीं मिलती। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं वो दुआओं के पात्र बनते। जो कोई भी आश नहीं रखते हैं और देने का काम करते, कभी लेने का सोचते भी नहीं है, उनको दुआएं देते। जिनके बुद्धि में ये होता है कि मैंने दिया उसने मुझे देना चाहिए, उसको कभी दुआ नहीं मिलेगी। तभी बाबा कहता है सबसे इजी है दुआ देना दुआ लेना, इसमें तुम्हारा खर्चा तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ मनसा के द्वारा तुम सबके लिए सदैव शुभ सोचते रहो। जो मित्र है उनके लिए तो शुभ सोचो, परंतु जो तुम्हारे है विरुद्ध है उनके लिए भी सदैव शुभ सोचो, क्योंकि बाबा सर्व के लिए शुभ सोचता है, तभी तो आया है। तो जब हमें बाप समान बनना है तो बाप जैसी हमें क्या करनी है, क्वालिफिकेशन धारण करनी है, गुण धारण करने हैं, तभी हम बाप समान बनेंगे और फरिश्ता बन के अपने घर तक पहुंच सकेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं दुआएं रॉकेट का काम करता है। अपने आप से कैसे दुआएं लेना है, बाबा से कैसे दुआएं लेना है और अन्य आत्माओं से कैसे दुआएं लेना है, इतनी बड़ी सब्जेक्ट को बहुत सरल रूप से हम सब के आगे रखा। आदरणीय दीदी जी को हम दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ओम शांति।